मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज नवंबर का आखिरी दिन है। 30 नवंबर 2015 के इस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, साथ ही स्वागत करता हूं मैं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं मनु दत्त शर्मा, आप हिसार से हैं, हरियाणा से। अनिल कुमार तिवारी, आप खजुराहो मध्य प्रदेश से हैं। अर्जुन बी पुरी, आप कोलकाता से हैं। और अजीत कुमार यादव, आप जौनपुर / दिल्ली लिखा हुआ है वहां से हैं, शायद जौनपुर के रहने वाले होंगे और दिल्ली में अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मनुदत्त, अनिल, अर्जुन और अजीत, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं जबकि फरवरी 2016 के आखिरी फरवरी को हम सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे और सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के ऑडियो की शुरुआत करूं विधिवत तरीके से, एक दो कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं। एक सूचना यह है दोस्तों कि जब हमारा थर्ड बैच अभी यहां चल रहा था तो उसके आखिरी दिन फेयरवेल एड्रेस में स्टूडेंट्स को मालूम है कि मैडम आई थी, मेरी पत्नी प्रीति अग्रवाल आई थी, वो स्टूडेंट्स से मिली और बहुत से स्टूडेंट्स ने उनसे रिक्वेस्ट की थी काउंसलिंग के लिए। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से वहां काउंसलिंग भी उनसे ली थी। तो उनके इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने फैसला किया है कि प्रीति जी प्रतिदिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग देंगी और जो भी ऑडियो सुनने वाले स्टूडेंट हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो उनसे अपनी लाइफ के बारे में, स्पेशली मैं यहां बता दूं कि लाइफ के बारे में वो उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग के मामले में वो बहुत बेहतर हैं और जीवन का बड़ा गहरा और उनके पास व्यापक अनुभव है। उनको भी ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स की समस्याएं बड़ी छोटी छोटी होती हैं लेकिन वे उनसे बहुत एडवर्स तरीके से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित होते हैं जिसका असर उनके दिल दिमाग पर पड़ता है। और निश्चित रूप से अगर किसी बात का असर दिल और दिमाग पर पड़ रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो कैरियर पर पड़ना है। तो मित्रों, फिर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपना प्रतिदिन का कुछ वक्त काउंसलिंग के लिए देंगी। तो मैं आप लोगों को उनका मोबाइल नंबर दे रहा हूं। उनका नाम है डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, वो भी पीएचडी डॉक्टर हैं मेरी ही तरह, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल। उनका मोबाइल नंबर है 9644624449। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। मित्रों, ये उनका मोबाइल नंबर है और प्लीज टाइमिंग्स नोट कर लें, इसी समय के बीच में आप उन्हें फोन करें और मुझे विश्वास है कि इस अनुशासन का पालन आप सब बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने वक्त फिक्स किया है सुबह 11 से 12 बजे तक, यानी कि दिन में 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक एक घंटे का वक्त है और इसके बाद है शाम का 6 बजे से 7 बजे का वक्त। मैं रिपीट कर रहा हूं समय को भी, सुबह यानी दोपहर से पहले 11 बजे से 12 बजे के बीच और शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच। मित्रों, मैं एक बार फिर से अपनी सूचना को दोहराता हूं कि डॉक्टर प्रीति अग्रवाल स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करेंगी, उनको सलाह देंगी, खासकर जीवन में जो परेशानियां महसूस करते हैं उन सबसे रिलेटेड इश्यूज पर वो उन्हें सलाह देने का काम करेंगी। और ये सलाह मुफ्त है, आपको इसके बारे में किसी तरह के कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। मैंने मोबाइल नंबर अभी बताया है, वो मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लें, टाइम का फिलहाल ध्यान रखें, वह है दोपहर 11 से 12 बजे और शाम को 6 बजे से 7 बजे। मित्रों, एक बात मैं स्पेशली आप लोगों से कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपको इस नंबर पर किसी वजह से तुरंत जवाब नहीं मिलता है या फोन उठाया नहीं जाता है या बाय द वे स्विच ऑफ आता है, बाय द वे की बात है, कभी कभी अगर ऐसे अवसर आते हैं, है ना, आदमी की अपनी जरूरतें होती हैं, आप समझ सकते हैं, तो ऐसे समय में आप इसी नंबर तक सीमित रहिएगा। मतलब ये मत सोचिएगा कि आपको किसी और दूसरे नंबर से पता करना चाहिए या जो एकेडमी का जो नंबर है आपको वहां से पता करना चाहिए, उनसे आपकी समस्याओं का हल नहीं होना है, क्योंकि ये यूनिट बिल्कुल अलग है, एकेडमी के जो नंबर हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो ताकि किसी तरह की व्यवस्था में कोई परेशानी न हो, क्योंकि एकेडमी का नंबर एक दूसरे पर्पज के लिए है, वो लगातार दूसरे कामों में व्यस्त रहता है, मैडम का जो फोन है वो अपना फोन है, वो अपने में व्यस्त रहती हैं, तो हो सकता है कि उस समय किसी और का भी फोन आया हो, और आप जानते हैं कि जब काउंसलिंग की बात होती है तो थोड़ा सा लंबा वक्त भी अपेक्षाकृत लग जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही कि एंगेज आ रहा है तो थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे और अपने मोबाइल नंबर जो आप बात करना चाह रहे हैं उसको यहीं तक सीमित लेकर चलेंगे। तो मित्रों, इस सूचना के बाद एक दूसरी सूचना है, और वो ये है कि जो हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनको जो नोट्स भेजे जाने थे वो नोट्स आप लोगों को मिलने शुरू हो गए होंगे, आप उन सबको संभाल कर रखेंगे। ये जो नोट्स हैं, चूंकि रिवाइज्ड नोट्स हैं, अपडेटेड नोट्स हैं, इसीलिए फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स को भी ये नोट्स भेजे जाएंगे, कुछ को भेजे जा चुके होंगे, क्योंकि एक साथ सबको इतना भेजा जाना संभव नहीं होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के जो स्टूडेंट हैं अपने पिछले जो उनके पास नोट्स हैं उनको रिप्लेस कर दें और उसको उसकी जगह पर इस नोट्स को ले आएं। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स के पास वो नहीं होंगे, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप इन नोट्स के आधार पर क्लास लेक्चर को याद करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपको क्लास में जो कुछ भी बातें बताई गई थी वो आपके ध्यान में आने लगेंगी। मित्रों, ठीक इसी तरीके से स्पेशल ऑडियो आप लोगों को भेजा जा चुका है, फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच को अलग से भेजा गया है और थर्ड बैच के जो स्पेशल ऑडियो हैं वो अलग हैं, उन्हें अलग से भेजा गया है और मुझे विश्वास है कि वो भी स्पेशल ऑडियो आप लोगों को अवेलेबल हो चुके होंगे। तो मित्रों, इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेज पर, वो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। मित्रों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, शायद एकाध सप्ताह पहले की ही बात हो, और आप लोगों ने भी ये खबर पढ़ी होगी, आप लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा होगा, युवराज जो हमारे यहाँ के एक बड़े रेनाउंड क्रिकेटर हैं कि उन्होंने उनकी मंगनी हो गई है, उन्होंने एक लड़की से शादी करने का फैसला किया है, वो लड़की फॉरेन की है। इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये नहीं है कि उन्होंने शादी करने का फैसला किया है, मंगनी हो गई है और वो फॉरेन की है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, जिधर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो ये कि जब उनसे पूछा गया कि आपने उन्हीं को क्यों चुना, उसी लड़की को क्यों चुना, तो मैंने जो पढ़ा है अखबार में ही पढ़ा है, तो उसमें उनका जवाब था इसलिए क्योंकि वो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये उनका जवाब था, उनके चयन का आधार यह था कि क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। खैर, हम मानकर चलते हैं कि चयन का आधार सिर्फ यही नहीं होगा कि क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बल्कि जो और भी बातें होंगी उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात युवराज जी को यह लगी होगी कि वो क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। मित्रों, आपको यह जवाब कुछ उटपटांग सा नहीं लग रहा है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी जो इतना रिनाउंड क्रिकेट प्लेयर रहा है अपने जीवन साथी के, अपने जीवन संगनी के रूप में एक ऐसी लड़की को अपने पत्नी के रूप में चुनता है जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसके पीछे भावना क्या है, या भावना की हम न बात करें बल्कि मैं तो कहूंगा कि इसके पीछे विचार क्या है, उन्होंने क्यों नहीं एक ऐसी लड़की को चुना, हो सकता वो विदेशी होती या सुंदर होती या जो भी है, दूसरे सारे गुण मिलते हैं उनमें, लेकिन वो क्रिकेट के बारे में भी जान रही होती, क्रिकेट की भी फैन होती, तो सामान्य रूप में हमको लगता है कि फिर तालमेल बड़ा अच्छा बैठता, क्योंकि वो क्रिकेट की चुनौतियों को समझ पाती, अपने पति पर गर्व भी कर पाती कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो इतने बड़े क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, जो हर पति मतलब सोचता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे मुझ पर गर्व करें, तो चूंकि तो क्रिकेट के बारे में कुछ जानती ही नहीं है तो गर्व क्या करेंगी, कि ठीक है कोई खिलाड़ी होंगे, तो इसके पीछे विचार क्या है? मित्रों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विचार है और सच पूछिए तो एक बहुत गहरा विचार भी है। वो ये है कि जब कोई सेलिब्रिटी बनता है, जैसे युवराज एक सेलिब्रिटी हो गए हैं, तो सेलिब्रिटी बनने के बाद सबसे बड़ा संकट उस सेलिब्रिटी के साथ यह होता है कि दूसरों पर उसका यकीन कम होने लगता है। उसके लिए दूसरों पर सीधे सीधे विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि वो दूसरों पर अविश्वास करने लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी उनसे जुड़ते हैं, जो भी उनसे मिलते हैं, जुड़ना चाहते हैं, या कह लीजिए कि उनसे प्रेम करना चाहते हैं, तो उनके मन में एक बात आती है कि अब बेसिकली ये एज ए ह्यूमन बीइंग मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, मुझसे जुड़ नहीं रहे हैं, बल्कि मेरी जो इमेज है, जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में मुझसे जुड़ रहे हैं। सपोज अगर मैं बहुत बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं होता, इतना सेलिब्रिटी नहीं होता, मेरा इतना बड़ा नाम नहीं होता, तो क्या सच में ये मुझसे शादी करना चाहती? क्या सच में मुझे ये प्रेम करती? तो मित्रों, यहां देखिए, चयन के बिल्कुल दो आधार हैं। जब हम किसी के साथ जीवन निभाने की बात करते हैं तो हम किसको चुने, इसके बिल्कुल दो एकदम सेपरेट रास्ते हैं। पहला तो वो रास्ता है जो उसके ग्लैमर, उसकी शोहरत, उसका पैसा, उसकी प्रसिद्धि, इन सबसे प्रभावित होकर के सोच कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है कि नहीं, अगर यहां मैं शादी करता हूं या शादी करती हूं तो मेरा जीवन बहुत सुरक्षित रहेगा, बहुत अच्छा भी रहेगा और जीवन सुखमय रहेगा, राइट? तो यहां व्यक्ति गायब हो जाता है और क्या महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसकी शोहरत, उसका पैसा, उसकी सुविधाएं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर कोई एक ऐसी लड़की जिसको क्रिकेट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से है, तो अब जो उसका प्यार है वो उस व्यक्ति के प्रति है, उस इंडिविजुअल के प्रति है, उसकी शोहरत के प्रति नहीं, उसके धन के प्रति नहीं, उसकी दूसरी चीजों के प्रति नहीं। तो जो प्रेम की भावना जो हम महसूस करते हैं मित्रों दूसरों के प्रति, मान लीजिए कि आपसे कोई प्यार करता है, चाहे कोई भी हो, मैं एक केवल रोमांटिक लव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम तौर पर प्यार की बात कर रहा हूं। देखिए, जो हम जब सेलिब्रिटी के रूप में जिनको प्यार मिलता है, दूसरों से, पब्लिक से प्यार मिलता है, उन अपने फैन से प्यार मिलता है, मैं किसी भी मायने में उनसे मिलने वाले प्यार को कम बड़ी बड़ा प्यार नहीं मान रहा हूं। मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं कि ये फालतू का प्यार है, ये ढोंग का प्यार है, ये सतही प्यार है, बिल्कुल भी नहीं। उनके प्यार में उतनी ही शुद्धता, पवित्रता, महत्व, गहराई है जितनी कि दूसरे के प्यार में हो सकती है। लेकिन जो पति और पत्नी के बीच का जो प्यार होता है वो एक अलग तरीके का प्यार होता है, क्योंकि उसमें एक बहुत जबरदस्त समर्पण की भावना होती है और एक दूसरे के साथ एक पूरी की पूरी अब जिंदगी गुजार देने का एक कमिटमेंट होता है, एक प्रतिबद्धता होती है। तो ये निभति तब है जब हम व्यक्ति के इस ग्लैमर और इन बाहरी चीजों को छोड़ करके उसके व्यक्तित्व के सार से प्यार करें, यानी कि उस व्यक्ति से आप प्यार कर रहे हैं। मित्रों, ये सेलिब्रिटीज के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि उनको वो सच्चा प्यार कैसे मिले। हो सकता है कि मिल भी रहा हो, जो सामने वाला प्यार कर रहा है वो शोहरत से ही प्यार नहीं कर रहा है, वो सच में प्यार कर रहा है, लेकिन उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सच में ऐसा होगा। इसीलिए सेलिब्रिटी के बारे में एक बहुत विचित्र सी बात कही जाती है दोस्तों, कि जो जितना बड़ा बनता चला जाता है वो उतना अकेला होता चला जाता है। आपने शाहरुख खान का अगर एक इंटरव्यू पढ़ा हो जो बरखा दत्त को उन्होंने दिया था, उन्होंने ये कहा कि मैं जब सोचता हूं तो लगता है कि मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। बड़ी विचित्र सी बात है, शाहरुख, आपको चाहने वाले इतने सारे लोग हैं, इतने फैन हैं, आपके पीछे लोग पागल हैं, आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए बेचैन रहते हैं, और आप कैसे कह सकते हैं कि आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं है? तो अब जो सच्चा दोस्त की परिभाषा है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां जो वो सच्चे दोस्त की बात कर रहे हैं वो एक ऐसे मित्र की बात कर रहे हैं जिससे वो अपने मन की बात कर सकें, अपनी अंदरूनी बातों को डिस्कस कर सकें, जिसे वो एकदम अपना निकट समझ सके, अपना पर्यायवाची समझ सके। अब ऐसे लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन सवाल है कि मैं कैसे यकीन करूं कि हां ये वही है। तो यह विश्वास का संकट मित्रों बहुत बड़ा संकट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिखर पर ज्यादा लोगों के बैठने की जगह नहीं होती है। शिखर तो आप देखते हैं कि बिल्कुल नुकीला सा है, और जब कोई व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है तो धीरे 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 वो अकेला होता चला जाता है, क्योंकि वहां बैठने वालों की ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। तो मित्रों, खासकर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सबको जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई सफलता तो मिलती ही है, उस समय हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किस तरह से अपनी इस सफलता को बिल्कुल जनरलाइज करके, इसका साधारणीकरण करके, लगातार लोगों से मिलते जुलते रहें, लोगों को अपना समझते रहें, ताकि लोग भी हमें अपना समझें और हम इस अविश्वास की गिरफ्त में आने न पाए। इसका निर्धारण हमारे विचार करेंगे, हमारी अपनी जीवन पद्धति करेगी, हम जिस तौर तरीके से जीना चाह रहे हैं और जी रहे हैं वो करेगी। तो मित्रों, आप कुछ भी बन जाएं, हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन इंसान हैं, इस बात को कभी भी न भूलें। जिंदगी का मजा बहुत दोस्तों अद्भुत हो जाता है, जिसका जवाब नहीं। फ्रेंड्स, अब लाइफ मैनेजमेंट के इस हिस्से के बाद अब मैं आता हूं कल के आकाशवाणी के समाचार पर। आप लोगों ने आकाशवाणी के समाचार सुने होंगे। कल के आकाशवाणी के समाचार में दो सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनकी चर्चा मैं थोड़ी सी करना चाहूंगा, और उसमें एक जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो विश्व जलवायु सम्मेलन की है। आपने देखा कि लगभग 5 मिनट इस पर दिए गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पेरिस पहुंच चुके हैं सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और मन की बात के अंतर्गत भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश से बात की है, हमारे पूरे के पूरे देश से जो बात की है, वो जलवायु के ऊपर ही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये बहुत बहुत बड़ा सम्मेलन है और पूरी दुनिया इस सम्मेलन को अब बिल्कुल बहुत उत्सुकता के साथ देख रही है। कुछ बातें आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जानी चाहिए इस सम्मेलन के बारे में। पहला तो है कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही ये कॉन्फ्रेंस है, मतलब उसी की ही बॉडी इसको कर रही है। दोस्तों, पहली बात, हमारे यहां से प्राइम मिनिस्टर गए हैं इसमें भाग लेने के लिए, और चूंकि सम्मेलन इतना बड़ा है तो बट नेचुरल है कि हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट को ही वहां रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अमेरिका से ओबामा साहब आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े विकसित देशों के भी जो प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, तो उसमें या तो राष्ट्राध्यक्ष हैं या सरकार के प्रमुख हैं, ऐसे ही लोग भाग ले रहे हैं। और ये बहुत एक प्रोटोकॉल का सवाल होता है कि जब कोई इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा हो तो उसमें जो राष्ट्र के या सरकार के जो प्रमुख हैं वही भाग लें, क्यों, ताकि वो वहां सीधे सीधे इंटरेक्शन कर सकें, और जब वो कोई बात कहते हैं तो उसे दुनिया सुनती है, और अगर सेकेंड थर्ड पोजिशन का व्यक्ति वहां बात करेगा तो उसे फिर उसी तरीके से कमजोर तरीके से थोड़ा सा लिया भी जाता है। जैसे भारत के अगर वहां प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो वो पूरे भारत की आवाज के रूप में, हालांकि मंत्री भी अगर बोलेंगे तो भारत की ही आवाज होगी, लेकिन उसे वो वेटेज नहीं मिल पाता है प्रोटोकॉल के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने पर मिलेगा। अगली बात यह है दोस्तों कि ये जो सम्मेलन है, स्पेसिफिकली आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि इस बार 2015 के प्री के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया था कि ये जो पर्टिकुलर सम्मेलन है ये किससे जुड़ा हुआ था, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है या मॉन्ट्रियल है सम्मेलन है या रियो दे जनेरियो में जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है, तो पूछा गया था कि ये किन किन से जुड़े हुए हैं। या मैं थोड़ा सा आपको अलर्ट कर दूं कि खासकर जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक जब हम बात करते हैं तो वो एक बहुत ही व्यापक स्तर पर होती है। जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसके बहुत से रीजन हैं। तो कहीं गैस के उत्सर्जन को लेकर के बात होगी तो वो ओजोन परत से जुड़ जाएगा, कहीं तापमान की वृद्धि को रोकने के लिए बात होगी तो इसका भी संबंध कहीं ना कहीं तो क्लाइमेट चेंजेस से है, लेकिन ये पता लगा कि ये पूरी तरह से तापमान की वृद्धि को रोकने के लिए किया गया सम्मेलन है, कहीं बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन के लिए होगा। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर थीम होती है, हालांकि उन सबका संबंध अंततः होता क्लाइमेट चेंज से ही है। तो मित्रों, ये जो सम्मेलन है, नो डाउट कि ये जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती अब दुनिया को दिखाई दे रही है उसी से ही, लेकिन जो मेन इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन जो लगातार जो ओजोन की परत को नष्ट कर रही हैं, और ओजोन के परत के नष्ट होने के कारण जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, और धरती का तापमान बढ़ने के कारण फिर जो दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको मालूम है कि फिर आपको दुनिया भर के रोग होंगे, समुद्र का ग्लेशियर जब पिघल करके समुद्र में आएंगे तो समुद्र के जल की सतह उठेगी, और फिर पता लगा कि समुद्र के किनारे जो देश हैं वो डूब जाएंगे, और क्रॉप पर भी इसका, मतलब दुनिया भर का असर खासकर तापमान की वृद्धि से होगा। इस तरीके से ये जो सम्मेलन है ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए है, ये बात हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहूंगा खासकर अपने फर्स्ट सेकेंड बैच के स्टूडेंट को कि उनको ध्यान होगा कि जून 2015 में उनको मैंने दो स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किए थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज आप ये दोनों स्पेशल ऑडियो एक बार फिर से सुन लें, इसलिए कि एक अगर आप इन्हें सुन लेंगे तो आप देखेंगे कि अभी जो पेरिस सम्मेलन में जो डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि ये अभी दो सप्ताह का है और रोजाना आप देखेंगे कि अखबारों में भी पर्याप्त रूप में आपको पढ़ने को इसके बारे में मिलेगा और नो डाउट कि आपको न्यूज में भी सुनने को मिलेगा, तो इस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाए। इसके लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लोगों को जो स्पेशल ऑडियो प्रोवाइड किए गए हैं प्लीज उन स्पेशल ऑडियो को आप जरूर देखें। ये दोनों के दोनों जून में मुझे लगता है कि प्रोवाइड किए गए हैं या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आपको मिले होंगे, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन प्लीज इन्हें आप जरूर देखें। एक का तो विषय ही है ग्रीन हाउस गैसेस, सब्जेक्ट ही है उसका कि ग्रीन हाउस गैसेस। उसमें आपको बताया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है, फिर ग्लोबल वार्मिंग के क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, ग्रीन हाउस के क्या इफेक्ट हो रहे हैं, फिर ओजोन परत क्या है, इससे क्या फायदे नुकसान हो रहे हैं, फिर आपको ये भी बताया गया है कि उसको उसके लिए कौन कौन सी ट्रीटीज की गई, उस ट्रीटीज की क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, और फिर आपको ये भी बताया गया है कि भारत द्वारा क्या इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक और स्पेशल ऑडियो आपको प्रोवाइड किया गया है, वो है हरित भारत के लिए, मतलब ग्रीन इंडिया के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो स्पेशल ऑडियो आपको प्रोवाइड किया गया है। और मित्रों, आपको मालूम ही है कि अभी जो लेटेस्ट स्पेशल ऑडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो मैंने आप लोगों से कहा था कि रामचंद्र गुहा जी की जो किताब है उपभोग की लक्ष्मण रेखा, उस पर बेस्ड, जो जलवायु पर ही है बेसिकली, वनों पर और पूरे के पूरे प्राकृतिक संसाधन पर है, कह लीजिए उसे, हम जलवायु पर सीधे सीधे न कहें, उस पर दो स्पेशल ऑडियो तैयार किए गए हैं। एक स्पेशल ऑडियो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच को अभी प्रोवाइड किया जा चुका है, अभी जो कल संडे था उसमें, और जो दूसरा है उसी का जो सेकेंड पार्ट है वो उन्हें कमिंग संडे को प्रोवाइड किया जाएगा। तो मुझे लगता है मित्रों कि ये चार स्पेशल ऑडियो और फिर अभी जो पेरिस सम्मेलन हो रहा है, अगर इन पर आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, उस पर आप सबकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि फिर इसके लिए आपको और ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी। हां, यह जरूर है कि आपको इसे लगातार अपडेट करते जाना है। अपडेट करने में मित्रों, खासकर जो सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको मालूम है कि पहले हम लोगों की बातचीत भी हो चुकी है इसके बारे में, बहुत की बड़े अप्लाइड नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बड़े व्यावहारिक किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर कोई समाचार किसी वजह से बहुत प्रसिद्ध हो जाता है या पॉपुलर हो जाता है या नोन हो जाता है पब्लिक के बीच में, तो मुझे लगता है कि ऐसे रेफरेंसेस हमें यूज करने चाहिए। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी जब मन की बात में देश से बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एक नाम मेंशन किया है, खासकर कानपुर की एक महिला का, नूर जहां का जिक्र उन्होंने किया है कि उन्होंने किस तरह से एक सौर लालटेन डेवलप किया है जिसकी जिसको लेने पर केवल महीने में 100 रुपए एक खर्च होते हैं, केवल 100 रुपए खर्च होते हैं, सोच करके देखिए, और उससे वो गांव में लोगों को दे रही हैं। तो एक सौर लालटेन से आप सोच करके देखिए कि कितनी ज्यादा इसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक तो केरोसिन जलना बंद हो जाएगा, तो केरोसिन से आप सोच देखिए कि कितना कार्बन निकलता है। दूसरा यह है कि गांव में जो जंग और दूसरे माध्यमों से जो ईंधन का इस्तेमाल करते हैं वो कम हो जाने से, मतलब एक बहुत बड़ी मदद सच पूछे तो जलवायु को साधने में मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे देश की तो अभी भी 60% आबादी, मतलब 2/3, लगभग 65-70% आबादी गांव में ही रहती है। मेरे कहने का मतलब केवल यह है मित्रों कि जहां भी आपको इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, आपको चाहिए कि आप उन्हें नोट कर लें, ताकि ऐसे में या क्वेश्चन के आंसर लिखने में जहां भी अप्रोप्रिएट लगता हो आप उन्हें मेंशन कर सकें। और आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने खासकर पेरिस जाने से पहले एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है। सिविल सर्विस की यही डिटेलिंग होती है, आप उस शब्द को भी नोट कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है हमारे साझा घर की हिफाजत, हमारे साझा घर, मतलब इन्होंने विश्व की बात नहीं की है कि पूरे विश्व में तापमान वृद्धि हो रही है, हमारा हमारा साझा घर, ये वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पर ये शब्द आया हुआ है, क्योंकि भारत तो पहले से ही पूरी दुनिया को एक कुटुंब मानता है, एक परिवार मानता है, वसुधैव पूरी की पूरी वसुधा, ये पृथ्वी हमारे कुटुंब की तरह है, उसी के वजन पर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है हमारे साझा घर की, जो पूरी दुनिया है ये हम सबका संयुक्त रूप से घर है, या हम इसके सदस्य हैं, एक ज्वाइंट फैमिली की तरह हैं, और इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस शब्द को भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। मित्रों, इसी तरीके से आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक एडिटोरियल कमेंट भी है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें इन्होंने कुछ बहुत अच्छे उपाय बताए हैं कि जो कोल है, कोयला निकलता है, कोयले से बिजली बनती है, उनका कैसे हम एक टेक्नोलॉजिकली दूसरे तरीके से इस्तेमाल करके जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जो उससे कार्बन निकल रहा है, वो उन्हें हम काफी कम कर सकते हैं। तो ये एडिटोरियल कमेंट में नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप लोग देख लेंगे। इसके साथ ही इकोनॉमिक टाइम्स का एक और भी एडिटोरियल कमेंट है, खासकर जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे देश में अभी जो आपको मालूम है कि जो वाटर रिसोर्स है, या वाटर रिसोर्सेज बेसिकली स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्यों के विषय है, और राज्य इनके बारे में कानून अपने अपने सबने बनाए हैं। इसके बावजूद आप देखते हैं कि राज्य, इसी के कारण शायद है कि कितने नदियों के पानी को लेकर के राज्यों में आपसी में डिस्प्यूट भी है, राज्य बहुत कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि नदियों के बारे में भी एक हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी भी बनाई जानी चाहिए, और आप इसका सीधा संबंध फिर जलवायु से हो जाए, या कह लीजिए कि प्रदूषण से हो जाता है, नदियां कितनी प्रदूषित हैं इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने बताया है कि भारत के, हमारे यहां विश्व की लगभग 18% पॉपुलेशन है, जबकि वाटर रिसोर्सेज हमारे पास सिर्फ 4% है, और दिन पर दिन जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे और होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि भारत आने वाले खतरे को से बचने के लिए अभी से इसके बारे में एक बहुत ही व्यावहारिक पॉलिसी बनाए, ये भी मैं नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, फिर आखिरी जो खबर है वो असहिष्णुता पर है। असहिष्णुता पर तो हम लोगों ने काफी बातें की हैं, खासकर आपने देखा कि जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ था तो उसमें दो दिन तक कॉन्स्टिट्यूशन पर बहस हुई, और उसमें धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को लेकर के सवाल उठे थे, और उसके बारे में हमने पिछले ऑडियो में हम लोगों ने आपस में बातचीत भी की थी। इसके बाद फिर दो सदस्यों ने, जो आज न्यूज में है, कि डिमांड की कि असहिष्णुता पर चर्चा होनी चाहिए, और आप देख रहे हैं कि चूंकि पूरे देश में एक तरह से बहस शुरू हो गई है, खासकर आमिर खान के स्टेटमेंट के बाद ये और भी इसने, इस बहस ने तूल पकड़ा, और उसी समय ये पार्लियामेंट शुरू होना था, तो अब ये डिसाइड किया गया कि असहिष्णुता पर चर्चा होगी। तो मित्रों, मेरी सलाह है कि आप अगर राज्यसभा या लोकसभा के टीवी का टीवी देखते हो तो थोड़ी देर के लिए इनकी चर्चाओं को अगर आप देख सकते हो तो देखें। अखबारों में डेफिनेटली इस पर विस्तृत रिपोर्टिंग आएगी, उन रिपोर्टिंग्स को पढ़ें। निश्चित रूप से मैं भी आप लोगों को इसके बारे में अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता रहूंगा। अब एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आएंगे, उन पर आपका बकायदे ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, टॉलरेंस, असहिष्णुता, भारतीय दर्शन, ये एक ऐसा विषय हो गया है जिस पर न केवल जनरल स्टडीज के फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ पेपर, थर्ड, फोर्थ पेपर में क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, बल्कि ताज्जुब नहीं कि ऐसे भी इसी तरह के किसी विषय पर आ जाए, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए भी आपको इस विषय की बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहिए, ताकि आप कहीं उलझ न जाएं, यानी कि आपको अपना कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर करना ही होगा कि आप इसे क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, आपके अपने व्यू क्या हैं। तो एक अच्छा मौका है जब अपने दिमागी मंथन के द्वारा आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मित्रों, इसी सेकुलरिज्म को लेकर के एक आर्टिकल दीपांकर गुप्ता जी का है, बहुत अच्छा लिखते हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में है, एडिटोरियल आर्टिकल है, वो एडिटोरियल आर्टिकल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, आप इसे देख लेंगे। इसमें इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है, जो सबसे अच्छी बात कह लीजिए, कि जो देखिए, जो यूरोप में सेकुलरिज्म शब्द यूरोप से आया हुआ है, भारत तो शुरू से सहिष्णु देश रहा है, तो ये जो सेकुलरिज्म था यूरोप में कैसे आया, उन्होंने दो इसके तर्क दिए हैं। पहला तो ये है कि वहां तो चर्च का सीधे सीधे राज्य पर अधिकार, मत हस्तक्षेप था, मतलब राजा की यह स्थिति ही नहीं थी कि वो पोप की अनुमति के बिना कोई चीज कर सके या पोप के विरोध में कोई कर सके। तो जो चर्च हो, कह लीजिए, पोप का मतलब है चर्च, वो राज्य की सत्ता को नियंत्रित करता था। तो वहां सीधे सीधे चूंकि धर्म का राजनीति पर नियंत्रण था, इसीलिए जब उनको बिल्कुल अलग किया गया तो वहां धर्मनिरपेक्षता की बात आई कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। भारत में पहली बात ऐसी स्थिति नहीं रही है। दूसरी बात जो उन्होंने इंपॉर्टेंट कही कि जैसे जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यू बढ़ते चले गए, डेमोक्रेसी आती चली गई, वैसे वैसे धर्मनिरपेक्षता की बात भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि उसमें सभी के लिए समान जगह थी। लोगों को अधिकार जब मिलने लगे तो जिन लोगों को अधिकार मिल रहे हैं वो अलग अलग जाति धर्म विश्वास के लोग हैं, तो ऐसे में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग हुआ। तीसरी बात उन्होंने एक बहुत अच्छी कही है मित्रों, नेहरू जी का उदाहरण देकर के, कि किस तरह से नेहरू जी तो सेकुलर माइंड के थे ही, और जब हालांकि हमारा देश का विभाजन जो हुआ वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम कह लीजिए कि धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन भारत ने अपने को सेकुलर ही रखा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो सेकुलरिज्म की बात आती कब है, धर्म की बात आती कब है, वो तब आती है जब कुछ लोगों को ये महसूस होने लगे कि कुछ लोगों के द्वारा उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और अधिकारों के हनन होने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो रोजगार का होता है। अगर आर्थिक रूप से लोग ठीक ठाक हैं तो फिर इस तरह के विवाद उठते ही नहीं हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सेकुलरिज्म का विवाद ये सच कहीं ना कहीं वो आर्थिक स्थिति से पैदा हुआ विवाद है। और अगर मेरे तीनों बैच के स्टूडेंट्स को याद हो तो मैंने उनको बताया था कार्ल मार्क्स ने जो एक सोशल स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरह से उसके केंद्र में इकोनॉमी होती है और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बाहरी संरचना है, वो इस इकोनॉमी से ही पैदा होती है, उसी के अनुकूल बाहरी स्ट्रक्चर बनता है। और यहां दीपांकर गुप्ता जी ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं, तो मित्रों ये भी नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल है, इसे आप देख लेंगे। दोस्तों मैं जितने भी अखबार की क्लिपिंग्स थे उस पर मैं आपको बता चुका हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ विशेष नहीं है, इसलिए अब मैं आता हूं सीधे ईमेल पर। मेरे पास अजीत कुमार राय का मेल है दिल्ली से, उन्होंने जानना स्पेशल ऑडियो के बारे में जानना चाहा है कि मैं आपको बता दूं अजीत जी कि सॉरी हम ये अजीत जो स्पेशल ऑडियो हैं ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, ये केवल उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं जो यहाँ क्लास अटेंड करते हैं, और उसका पर्पस सिर्फ ये है कि क्लास अटेंड करने वाले स्टूडेंट ही इस स्पेशल ऑडियो का फायदा उठा सकते हैं, इसको समझ सकेंगे, एक डिफरेंट एंगल से तैयार किए जाते हैं, इसलिए न तो हम ये दूसरे स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं और न ही ये ऑथराइज्ड कोई है इसके लिए कि मार्केट में वो इसे बेचे। ये मैं सतर्कता बरतने के लिए की दृष्टि से कर रहा हूं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि हम आपकी इच्छा को पूरी करने की स्थिति में नहीं है। तो मित्रों बहुत से मेल आए हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से कुछ के नाम है निकिता गोपालगंज से, अखिलेश कुमार, दुर्गेश सोनी दिल्ली से, राजेंद्र सिंह बिस्ट बागेश्वर उत्तराखंड से, अमन तिवारी जयपुर से, तत्सत मलिक मुंबई से, आनंद कुमार बेगूसराय से और प्रियंका लिखार नागपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब मैं आज के इस ऑडियो डेली ऑडियो गाइडेंस को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार।